जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हसी। जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्त दिया गई। शायर इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं मगर हसी। जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो
किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। से एक हसी चेहरे हैं, किस किस को मैं देखूं, किस इसको जग में अपना समझूं, संग में अपने ले लूं, कोई रंगीली चैल छबीली, कोई रंगीली रसीली चैल छबीली, आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ओ, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया, प्यार जिसे कहते हैं, कौन वो किस्मत वाले हैं जो लोग वहाँ रहते हैं, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम मुँह धोती हो, चांद भी सदके होता हो जब रात को वो सोती हो, आँख शराबी गाल गुलाबी, आँख शराबी शराबी गाल गुलाबी, प्यार से सवार दे जो जिंदगी मेरी, किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा।
दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन रह भी सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के, तुम जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन इतनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया दिल को मिली जो तुम्हारी लगन दिए जल गए जाऊं कहां तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन
जब जब बाहर और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए
मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए
मुमकिन है जिंदगी
चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भौरा मुझे कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, सखा जीवन में फल सीखा नहीं, हाय रे हाय, सखा जीवन में फल सीखा नहीं, मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ।
दोनों मिले इस तरह, और जो जिंदगी।
साथियों हर हो आज
दिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल इन गोरी गोरी में मुका
वहाँ मिले थे ठेके में अरे हम तुम कुछ दिन पहले यहाँ मिले इंग्लिश में खाने में फिर देसी पहले
अरे हुक्का बीड़ी पीते थे वह बाद के रेशम पगड़ी
पर कस के बूट पहन के सूट आपात करे कोई तगड़ी यादें वादे
सपने इरादे
भूली बातें
याद करा दे
हटके भटके
यूं ही अटके
रहते हैं हम
लटके लटके
अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये दस्तूर पुराना
हमने माना
आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल इन गोरी गोरी में मौका
समझ के आगे बढ़ना आग का ये एक दरिया
दिल वालों से मिलना हो तो बंदा ही एक दरिया हो
वहाँ वो जीवन साथी है यहाँ रोज नया सावरिया
वो भी ठीक तो ये भी ठीक है अपना अपना नजरिया
झूमर पायल बिंदिया काजल
ना चुनरी है
ना है आंचल
रोज बरस के
उड़ जाता है
ये अंग्रेजी
हुस्न का बादल
दो काटन के बीच में यारो साबुत बचान को
आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल इन गोरी गोरी में मौका
हमको भेजा था अब किसको भेज के आए
अरे हम तो धक्के खा बैठे अब तुम क्या खाने आए
हो अरे बात करो कुछ खेतों की तुम जहाँ से होके आए और यहाँ तो पल पल धुएं के मारे दम ही घुटता जाए
आओ आओ उन्हें पिलाओ
सोए हुओं को जरा जगाओ
डरते डरते
काम है करते
तो बार बचे हैं मरते मरते
आओ पियो मौज मनाओ मौका फिर नहीं आना
तो फिर लाना
आज भरी महफिल मेरे कहीं टोल न जाए दिल इन गोरी गोरी में मौका नजर लगे ना साथियों पर हो आज भरी महफिल मेरे कहीं डोल न जाए दिल इन गोरी गोरी में मौका
खो जाने हैं पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के याराने हैं
पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के यारानी है इस मंजिल पर मिलने वाले
मिलने वाले आए मिलने वाले
इस मंजिल पर है मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने ले
पल दो पल का पल पल दो पल का साथ हमारा हमारा
हमारा हमारा दो पल पल दो पल का साथ हमारा हमारा
पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के याराने
शोक नजराने होंठों के गर्म पैमाने नजरों के शोक नजराने होंठों के गर्म पैमाने है आज अपनी महफिल में कल क्या हो कोई क्या जाने
नजरों के शोक
दीवाने
आज की खुशियाँ एक हकीकत कल की खुशियाँ अफसाने हैं
पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के याराने
दो पल पल दो पल का साथ हमारा हमारा
जो पीछा करे नादान है।
हर खुशी हर खुशी हर खुशी
हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है।
जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है।
जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वला फिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है।
मेरी जान ये जाए। पूछो बोलना
का जादू मिस्टर लवा लवा तेरी बातों का जादू मिस्टर लवा लवा मेरा दिल धड़काए मिस्टर लवा लवा मेरी जान ये जाए
किया है हिट्स ऑफ बॉलीवुड इंटरनेट रेडियो। दोस्तों अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत इस चैनल पर सुनना चाहते हो या अपना गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हो तो प्लीज विजिट अवर वेबसाइट हिट्स ऑफ बॉलीवुड।
Oh, no.
आया ये इंकलाब है, पर तू महसूस होता है, क्योंकि उस गांव में बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर रहते हैं और स्कूल होता है तो टीचर नहीं होते, तो यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है।
अगर आपकी इजाजत हो तो एक पॉइंट मैं ऐड यहाँ करना चाहूंगा। ये जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 1882 में जो हंटर कमीशन आया था ब्रिटिश जमाने में, उस समय महात्मा फूले ने वो प्रपोजल रखा था। फिर अंबेडकर साहब लगातार कहते आ रहे हैं कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास सिक्स, महात्मा फुले ने क्लास थर्ड तक कहा था। गांधी जी का था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन की बात करते थे,
जो अगर कौशल विकास के तौर पर।
हाँ, और जो उनका वहां पे साउथ अफ्रीका में फार्म था फिनिक्स का, उसमें उन्होंने वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग की। एक तो था कि स्वावलंबन की जो आपने बात की, टेक्निकल एडुकेशन की, कौशल की, और दूसरा था कि अपने गुरुजनों के साथ, बड़ों के साथ और बच्चों के साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे,
नैतिक आचरण।
वो नैतिक आचरण, तो शिक्षा का ये दो महत्व जोड़ते थे, स्वावलंबन और नैतिक आचरण, जो हम आज के आधुनिक भारत में या स्वतंत्र भारत में ये दो मूल चीजें केवल किताबी तौर पे पढ़ाते हैं, व्यवहारिक तौर पे नहीं पढ़ाते हैं, जिसका हम नतीजा दिख रहा है हमें।
हिमांशु जी, अगला प्रश्न भी मैं आपसे ही लेता हूँ। मुझे बड़ा हैरत हुई जब मैंने ये पढ़ा कि 1938 में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हर भारतीय परिवार एक कार रखेगा तो चलने के लिए सड़कें कम पड़ जाएं, और दांडी मार्च के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पैदल चल सकते हैं वे कार में नहीं जाएं। आज हमें वायु प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन के फॉर्मूले इजाद करने पड़ रहे हैं, और एक बात और है कि जब वाहन कम बिके तो वाहन उद्योग तौबा तौबा कर रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। आप कैसे देखते हैं इसको? इतने वर्ष पहले 1938 में उन्होंने कहा था कि कम कारें होनी चाहिए।
एक्चुअली देखें, जिस तरीके से हमारा पूरा विकास अर्थव्यवस्था का हो रहा है वो वेस्टर्न पैटर्न पे हो रहा है, और जो वेस्टर्न पैटर्न पे 1930s और 40s में यूरोप अमेरिका के अंदर समस्याएं आने लगी थी, वो अपने आप में एक इंडिकेशंस था भारत के जो सोचने वाले थे जैसे गांधी जी थे, तो ये दिख रहा था कि भारत उसी रफ्तार से अगर प्रोग्रेस करेगा तो वही हश्र होगा जो यूरोप का हो रहा है, जो अमेरिका का हो रहा है। तो इसीलिए 38 में 30s के दशक में जो उन्होंने बात कही थी, 70 साल बाद वो खुलकर सामने आ रही है, और छोटे से छोटे शहरों में भी अब गाड़ियों की तो वो एक्चुअली सिंबल था, बट सवाल है कि जब आप शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं या आपकी जब पर्यावरण के लिए ज्यादा चिंता नहीं है तो ये हश्र होना ही है, क्योंकि हमारा पूरा मॉडल का विकास जिसको गांधी जी ने सैतानिक कहा था, हम उसी की नकल कर रहे हैं जो यूरोपियन अमेरिकन है।
संजय जी, पानी बचाने के लिए गांधी जी ने सुझाव दिया था कि जो जमीनें खाली पड़ी हैं उन पर पेड़ लगाए जाएं। उन्होंने बारिश का पानी जमा करने पर भी जोर दिया था और बहुत वर्ष पहले दिया था। अगर उनके सुझावों पर अमल शुरू कर दिया जाता तो आज हमें वृक्षारोपण और जल संचय अभियान शुरू करने की बात नहीं कह रहे होते, हम बहुत कहीं आगे विकास के क्रम में निकल गए होते और दुनिया के मुकाबले हम बहुत विकसित हो चुके होते। क्या कहते हैं?
मुझे लग रहा है अगर हम थोड़ा अपनी जमीन पे और अपने रूट पे चलने की कोशिश करते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, और अगर आज भी हम नहीं संभालेंगे तो इसलिए स्थिति आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा। हम लोग की खुशनसीबी ये है कि अभी भी हमारी 40% लोग जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं, ये लोग देखिए कि अभी भी जो इनकी जरूरत बहुत कम है। इनकी जरूरत पश्चिमी की तुलना में तो नहीं है, लेकिन बड़े शहरों जैसे लोगों के जितना हो जाए तो कोई भी उद्योग या अर्थनीति इस समय हमारे लिए काफी नहीं होगा और गिर जाएंगे हम लोग। पर हमारी हिंदुस्तान के जो लोग हैं उसकी जीवन शैली अभी भी बहुत हद तक नियंत्रित है, संतुलित है, यही कारण है कि हम लोग अभी भी टिके हैं। अगर ये पश्चिमी जीवन शैली जैसा होता हमारा जीवन शैली तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग सबसे बड़े आर्थिक मंदी या खतरे में होते, क्योंकि जो परिस्थिति है इस समय। लेकिन एक हमारी जीवन शैली है कि हमको अभी भी मजबूत करके रखा है, इसलिए ये जो जीवन शैली हम लोग पहले निभाए हैं मुझे लग रहा है उसको फिर से जरूरत है, जो हमें कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ, नदियों के साथ, जंगलों के साथ एक अच्छे संबंध था। तो ये जो प्रकृति पूर्वक जीवन शैली है इस पे काम करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने तालाब की जिक्र किया, छोटे तालाब, थोड़ी बड़े तालाब, जो झील है इसको फिर से, इससे जो अवैध कब्जा, आपने जो सवाल उठाया, ये कब्जा हमें मुक्त करना होगा, हमें कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि पानी का सवाल है। जिन लोगों ने नदी पे कब्जा किया, नदी को प्रदूषित कर रहा, वहां भी हमें कठोर होना पड़ेगा थोड़ा। वहां पे हमें अपने भाई बंधु जो भी होंगे उनको समझाना पड़ेगा कि ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि ये भविष्य के लिए है। तो सतत विकास का यही है कि केवल हम अपनी पीढ़ी में सब कुछ खत्म नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएंगे। पर हमें लग रहा है कि इस समय हम लोग को एक होड़ हो गई कि हम सब कुछ इसी पीढ़ी में कर लेंगे, सारे सब कुछ जो है आने वाले लोगों के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो तालाब और जंगल जो है, जंगल को देखिए, ये जंगल बचाया किसने? आदिवासियों ने, जो जंगल में रह रहे इन्हीं लोगों ने। तो ये सब सवाल फिर से जरूरत, हमारे देश में कितने तरह के पौधा थे, हमने बाहर से पौधा मंगाया,
आयुर्वेद के जनक थे,
तो अब वो सब पौधा कहाँ गायब हो गए? तो क्या हम इस पे काम कर सके कि आने वाले 30-40 साल में हमारे देश में जितने पुराने पेड़ पौधा थे उनको हम फिर से जिंदा रखेंगे? जितने सरोवर, जितने नदियों के नाम हमारी किताबों में मिलते हैं, क्या हम उसको फिर से रिवाइव कर सकते? तो अगर हम थोड़ा कोशिश करेंगे 20-25 साल के एक लंबा प्लान लेके कि हमें यहां तक पहुंचना है, तो मुझे लग रहा है हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा युवा शक्ति है इस समय, और हमें उनके ताकत को इन कामों में लगाना है। एक्चुअली क्या है, सभी राजनीतिक पार्टी इस समय चाहते कि युवा उनके लिए काम करे, लेकिन कोई इस तरह के रचनात्मक कामों में काम करे, यहाँ प्रेरित करने की जरूरत है कि भाई आप हमारी पार्टी में आइए नहीं आइए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समाज के लिए काम करिए, आप गांव के लिए काम करिए, आप हिंदुस्तान के लिए काम करिए।
संजय जी, आपने कहा कि सरकारें तो प्रयास करती ही रहती हैं, सामाजिक संगठनों को भी प्रयास करने चाहिए, और मुझे लगता है कि जहां तक वृक्षारोपण का प्रश्न है तो बहुत से सामाजिक संगठन इस ओर आगे आ रहे हैं।
एक यहाँ पे जस्ट एक लाइन में ऐड कर दूं कि जो हमारी परंपराएं रही हैं, भारत की जो परंपराएं रही हैं, उसमें ये सोच है परिवारों के अंदर भी और समाज में भी था, कम से कम जिसको आज के भारत में वो टूटता हुआ दिख रहा है, जिसको इन्होंने समाप्त किया था, वो ये है कि हम प्रकृति से उतना ही लें जितनी हमारी जरूरत हो, और गांधी इसको बार बार जिक्र इसका करते थे।
देखिए, आश्रम व्यवस्था थी हमारे यहाँ, तो ये था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा, तो उस 25 साल में वो नौजवान क्या करता था, गुरुकुलों में जाता था जो जंगलों में होते थे, और उसके बाद
मैंने सिर्फ खोखले शब्दों और झूठे वादों को सुना है, क्योंकि एक देश दो प्रणाली की व्यवस्था और संयुक्त घोषणा व बुनियादी कानून में हांगकांग के लोगों को पूर्ण लोकतंत्र का वादा किया गया था, और हांगकांग की समृद्धि का एकमात्र तरीका यही है कि हम जो चाहते हैं वो हमें दे दिया जाए। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता एडी शू के शब्द। हांगकांग में लगभग 4 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में राष्ट्रीय एकता के नारे को चुनौती दी है।
रिपोर्ट सुना रही थी सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका से लौटने के एक दिन बाद ही एक बड़ा बदलाव करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि रही मलिहा लोधी को पद से हटा दिया है। मलिहा लोधी की जगह मुनीर अकरम को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नया स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। मलिहा लोधी को पद से अचानक क्यों हटाया गया और क्या इसका संयुक्त राष्ट्र के हालिया घटनाक्रम से कोई संबंध है, समझने के लिए मैंने इस्लामाबाद में वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से बात की।
देखें, सरकारी सतह पर तो कोई इसका कारण नहीं बताया गया है, लेकिन खुद ही मलिहा लोधी ने कल रात ट्वीट में ये कहा कि उन्होंने ये ओहदा छोड़ने का जो फैसला था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अमेरिका आने से पहले किया हुआ था, लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि ये दौरा मुकम्मल हो और उसके बाद वो चली जाएं। लेकिन अगर उन्होंने जाना था तो इसका इस दौरे से पहले किसी को कोई खबर नहीं थी, ना किसी को कोई इल्म था, तो अचानक ही हुआ है, और लगता है कि जो वो वजह बता रही हैं शायद वो वजह ना हो, क्योंकि इस दौरे में भी कुछ ऐसे इशारे मिले और फिर जो 4 साल उन्होंने वहां पर गुजारे उसमें भी कुछ ऐसे इश्यूज उठ खड़े हुए जिसकी वजह से उन पर काफी तनकीद हुई थी, तो शायद कारण वो है। और इमरान खान जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, क्योंकि ये यूएन के दौरे के दौरान भी एक आध मरतबा जब शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे थे तो ये साथ में खड़ी थी और फिर आहिस्ता से वहां से निकल गई बगैर कुछ बात किए, बगैर कोई वो किए, तो लग रहा था कि इस सारे उसमें इमरान खान और फॉरेन मिनिस्टर ही डोमिनेंट थे, इनको कोई ज्यादा प्रोमिनेंस उसमें शायद नहीं मिली, एक वजह शायद ये हो सकता है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो कश्मीरी लड़की की गलत तस्वीर अपनी स्पीच में दिखाई थी उस पर काफी लेदे हुई थी, फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर उधर ही थे तो इन्होंने जब मुलाकात की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से तो मलिहा लोधी ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि फॉरेन मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से इमरान खान की मुलाकात हुई, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको ठीक किया कि नहीं ये टाइपो हो गया है और वो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से मिले हैं, तो टाइपो में एक आध लफ्ज या एक आध शब्द जो है वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन पूरा ओहदा चेंज नहीं हो सकता, तो कुछ लग रहा था कि ये सारे इश्यूज ने मिलके उनका वहां कंटिन्यू करना कोई ज्यादा अच्छा यहाँ नहीं देखा जा रहा था और उन पे तनकीद भी हो रही थी कि कोई परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इस वजह से शायद उन्हें जाना पड़ा है।
हारून रशीद मलिहा लोधी की जगह अब मुनीर अकरम संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। मुनीर अकरम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
काफी सीजनड और पुराने डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड हो चुके हैं, काफी जाने माने जाते हैं, उनकी राय को काफी अहमियत दी जाती है, काफी अहम देशों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहसियत सफारतकार काम किया है, वो अमेरिका में भी काफी अरसा रह चुके हैं, काफी सीजनड आदमी है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इमरान खान ने सोच विचार और बड़े मशवरों के बाद उनको ये जगह दी होगी।
हारून साहब ये भी बताइए कि कश्मीर को लेके जो पाकिस्तान की मुहिम थी जिसमें मलिहा लोधी की एक अहम जगह मानी जाती थी, अब उस मुहिम पर क्या कुछ असर पड़ेगा या कुछ नए सिरे से रणनीति बनेगी?
नहीं, असर तो पड़ेगा और मेरे ख्याल में नेगेटिव असर ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और फिर यूएन जो था वो काफी इम्पोर्टेंट एक फ्रंट था पाकिस्तान के लिए इस सारे मुद्दे को जो वो कोशिश कर रहा है इंटरनेशनलाइज करने के लिए। उन्होंने जरा सोच विचार किया कि यूएन का सेशन खत्म हुआ है तो उसके बाद ही उनको फारिग किया है, तो देखना यही है कि अब नए आने वाले वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन में या वहां की सिक्योरिटी काउंसिल उसमें कितने सफल होते हैं।
ये थे इस्लामाबाद से वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, चलते चलते मुख्य समाचार पुनः सृष्टि श्रीवास्तव से।
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने संबंधी अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और कश्मीर से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 28 दिनों का वक्त दिया है। कैटलोनिया ने स्पेन से आजाद होने की अपनी मांग को दोहराया है। 2 साल पहले हुए जनमत संग्रह पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन ब्रेग्जिट समझौते में संशोधन के लिए जल्द ही यूरोपीय संघ के सामने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखने जा रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने के मौके पर जोरों शोरों से जश्न मनाया जा रहा है। नेपाल की संसद के अध्यक्ष कृष्ण बहादुर महारा ने स्टाफ की एक महिला कर्मी के साथ बलात्कार के आरोप लगने के एक दिन बाद इस्तीफा दे दिया है।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत।